ये बात आपको पहले बताया होगा या मालूम भी होगा आपको कि भगवद गीता का ये 18 अध्याय में तीन विभाग है, या 3 डिविजन्स। पहला 6 अध्याय, बीच वाला 6 अध्याय और आखिरी वाला 6 अध्याय। पहला 6 अध्यायों में क्या विषय वस्तु है, क्या सब्जेक्ट मैटर है पहला 6 अध्यायों में? और सार रूप में क्या है, व्हाट इज इन एसेंस? वेरी गुड, कर्म मिश्र भक्ति, कर्म मिश्र भक्ति इन एसेंस। और बीच वाला जो 6 अध्याय में शुद्ध भक्ति का प्रस्ताव, और आखिरी का जो 6 अध्याय में ज्ञान मिश्र, ठीक है, ये दैट इज इन एसेंस। वैसे तो आत्मा के बारे में थोड़ा सा ज्ञान है दूसरे अध्याय में, बाद में अधिकांश कर्म निष्काम कर्म के बारे में वर्णन है, अलग है। लेकिन कर्म मिश्र भक्ति, शुद्ध भक्ति और ज्ञान मिश्र भक्ति, ये 3 डिफरेंस है। और कोई भी वैदिक ग्रंथ का, कोई भी साहित्य का यह शैली होता है कि उस अध्याय का आखिरी श्लोक है वो पूरा अध्याय का सार माना जाता है। और वैसे ही ये 6 अध्यायों का जो आखिरी अध्याय है वो उस 6 अध्यायों का सार माना गया है। जैसे 6ठा अध्याय जो है वो पहले के इस 6 अध्यायों का सार है, और ये बीच वाला 6 अध्यायों का जो 12वां अध्याय है वो क्या है, बीच वाला 6 अध्यायों का सार है, द एसेंस ऑफ ऑल द 6 चैप्टर्स। इसलिए उसका नाम भक्ति योग है। ये शुरुआत होता है 7वां अध्याय से, जहां भगवान भक्ति का प्रस्ताव रखते हैं। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवाम माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वति समात्मा सुदुर्लभा। बाद में 8वां अध्याय में भगवान ने भी इसी बात को कहा कि मेरा हमेशा स्मरण करो, चिंतन करो। 9वें अध्याय में मनमनाहो मत भक्तो, 10वें अध्याय में भी उन्होंने भक्ति का ही स्थापना किया, जो चतुष्टोकी भगवद गीता में तेषाम सतयुक्तानाम भयताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धियोगंतम सतयुक्तानाम भयताम प्रीतिपूर्वकम। और फिर 11वां अध्याय में आखिरी में उन्होंने इसी बात को कहा, मत कर्म कृन मत पर्व मत भक्त संगवर्जित निर्वैर्य सर्वभूतेषु। अभी इन अध्याय में भगवान ने भक्ति का भी बात कहा, लेकिन साथ साथ में इन अध्याय में कभी कभी भगवान ने ज्ञान की बातें भी कहा। जैसे 6वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि 4 प्रकार के लोग मेरे शरण में आते हैं, उनमें से श्रेष्ठ कौन है, ज्ञानी में श्रेष्ठ है। और 8वें अध्याय में भी कुछ ज्ञान के बारे में कहते हैं, 9वें अध्याय में भी, और 10वें अध्याय 11वें अध्याय में भी थोड़ा सा उल्लेखन करते हैं। तो अर्जुन अभी इतने सारे बातों को सुना, लेकिन उन्होंने कहा कि हे भगवान, 6ठे अध्याय के आखिरी में आपने कहा कि योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेनांतरात्मना श्रद्धावान भजते योमां समय युक्ततो मताः। सार योगी में सर्वश्रेष्ठ योगी भक्त है करके आपने कहा, और बीच वाले अध्याय में भक्ति का पीछे उल्लेखन किया। मेरे हिसाब से ऐसा लग रहा है कि 2 प्रकार के लोग हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी सीधा स्वरूप का, भगवान की जो सच्चिदानंद स्वरूप का उपासना करते हैं, और एक प्रकार के लोग हैं जो निराकार ब्रह्म का उपासना करते हैं। मेरा ये मत है, मैं जानना चाहता हूं कि ये दोनों में श्रेष्ठ कौन है। तो ये 12वां अध्याय का मूल रूप में सार यही है कि भगवान भक्ति और भक्तों का श्रेष्ठता को स्थापना करते हैं, और भक्ति में भी उत्तम भक्ति, जो शुद्ध भक्ति का स्थापना करते हैं श्रेष्ठता का, और वैसे भक्त जिनके गुण हैं अद्वेष्टा सर्वभूताना मैत्र करुणे वचा, ये गुणों का भी उल्लेखन करते हैं। दैट इज एसेंस ऑफ दिस 12th चैप्टर। तो 12वां अध्याय का शुरुआत करते हैं इस प्रकार। अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ताये भक्त्यास्त्वां परिपासते हे चाप्यक्षर व्यक्तम येषां के योग वित्तमा योग वित्त मतलब योग को जानने वाले, वित्त मतलब जानना, तमा मतलब सर्वश्रेष्ठ कौन है, यानी योग पद्धति में जुड़े हुए लोगों में सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है। अनेकों प्रकार के हैं, लेकिन मुझे खास करके दो प्रकार के लोग हैं जिनके बीच में मुझे जानना चाहता हूं। एवं सतत युक्ताये भक्तास्त्वाम पर उपासते, एक प्रकार के लोग कौन हैं जो सतत आपकी सेवा में युक्त हैं और भक्ति के द्वारा आपको उपासना करते हैं, यानी आप जैसे मुझे सामने दिखाई पड़ रहे हो उसी स्वरूप का उपासना करते हैं। दूसरा कौन है, ये चा अपि अक्षरम अव्यक्तम, जो अक्षर और अव्यक्त वस्तु है उसका उपासना करते हैं, यानी ब्रह्म, उन दोनों में उत्तम कौन है। प्रभुपाद जी ये तात्पर्य के तीसरा पैराग्राफ में एक प्रकार का अभी तक भगवद गीता का सार बताते हैं, वो पढ़ना अति आवश्यक है, इस बार पढ़िए तीसरा।
जो लोग भक्त के द्वारा परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा करते हैं,
तीसरा पढ़िए, तीसरा ये चौथा, चौथा सर।
भगवद गीता के द्वितीय अध्याय में भगवान ने बताया है कि जीव भौतिक शरीर नहीं, वो आध्यात्मिक स्फुलिंग है और परम सत्य परम पूर्ण है। सातवें अध्याय में उन्होंने जीव को परम पूर्ण का अंश बताते हुए पूर्ण पर ही ध्यान कराने की सलाह दी है। पुनः आठवें अध्याय में कहा है जो मनुष्य भौतिक शरीर का त्याग करते समय कृष्ण का ध्यान करता है वो कृष्ण के नाम को तुरंत चला जाता है। यही नहीं, छठे अध्याय के अंत में भगवान स्पष्ट कहते हैं कि योगियों में से जो भी अपने अंतःकरण में निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है वही परम सिद्धि माना जाता है। उसका प्रायः प्रत्येक अध्याय का यही निष्कर्ष है कि मनुष्य को कृष्ण के सगुण रूप के प्रति अलग होना चाहिए क्योंकि वही चरम आत्म साक्षात्कार है।
हाँ
क्या
नहीं बस नेक्स्ट सेकंड। श्री भगवान उवाच मय्यावेश्य मनो ये माम नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेते नियुक्ततमो मता। मय्यावेश्य मनो ये माम, मयि आवेश्य मेरे में आवेशित होके, यानी पूर्ण रीति से मग्न होके अपने मन को नीत करके मेरे में नित्य युक्ता उपासते, नित्य मेरे ही उपासना करते हैं। श्रद्धया परयोपेतास, जो श्रद्धा के साथ परया उपेता, जो श्रद्धा से बहुत प्रेम से मेरे में मग्न रहते हैं, वैसे लोग युक्त तमा मताः, वो सर्वश्रेष्ठ है। तो इसका तुरंत भगवान डायरेक्टली आंसर देते हैं, हे अर्जुन जैसे दो प्रकार के लोग हैं, उन्होंने कहा वो दो प्रकार के लोगों में सर्वश्रेष्ठ कौन है, मेरा भक्त है। अभी ये सर्वश्रेष्ठ क्यों है, वाई जो भक्त लोग भगवान की जो उपासना करते हैं क्यों सर्वश्रेष्ठ है, इन दोनों में इसका क्या जवाब है? भगवान वो भगवान की प्रत्यक्ष डायरेक्टली भक्ति कर रहे हैं और दूसरे इनडायरेक्ट हाँ वो देवताओं के द्वारा। ये भगवान की जो निराकार तत्व है इम्पर्सनल ज्योति है ब्रह्म ज्योति है उसके द्वारा भगवान की उपासना थी इनडायरेक्ट वर्शिप टू द लॉर्ड। ए प्योर डिवोटी इज कॉन्स्टेंटली एंगेज्ड समटाइम ही चैंट्स समटाइम्स ही हियर समटाइम्स ही रीड्स बुक्स अबाउट कृष्णा और समटाइम्स ही कुक्स प्रसादम और गोज टू द मार्केट प्लेस टू परचेज समथिंग फॉर कृष्णा and sometimes he washes the temple or the dishes. Whatever he does not let a single moment pass without devoting his activities to Krishna. Such action is in full samadhi. So Prabhupada ji, ye bhakti ka nitya yukta upasate, iska paribhasha karte huye ye line likhte hai. Kabhi bhakt bhagwan ka naamon ko jap karta hai, कई भगवान के नामों का श्रवण करता है, कभी वो भगवान के लिए भोग बनाता है, सब्जियां खरीदने के लिए मार्केट में जाता है, कभी वो मंदिर साफ करता है, लेकिन सार रूप में ये है कि वो एक क्षण भी भगवान की सेवा में सेवा से विलग नहीं रहता। ये शुद्ध भक्त का लक्षण है और इसी को समाधि कहा गया है। भाव के स्तर में एक लक्षण है जिसको अव्यर्थ कालत्व कहा गया। अव्यर्थ कालत्व मतलब एक क्षण भी वो व्यर्थ किए बिना भगवान की सेवा मग्न है, तो ये शुद्ध भक्ति का लक्षण है। प्योर डिवोशनल से ऐसा जो भक्त है श्रेष्ठ है। इस समाधि सम्यक आधीयते इनकी समाधि सम्यक रूप में संपूर्ण रूप में हमारा मन भगवान के ऊपर ही चिंतन करता रहता है, ऐसी स्थिति को समाधि कहा जाता है। जैसे योग अष्टांग योग के द्वारा समाधि प्राप्त करते हैं, वो समाधि जो है वो भी दो प्रकार का है, संप्रज्ञात्मिका असंप्रज्ञात्मिका करके। यानी वो योगी हृदय में जो परमात्मा है उनके ऊपर ध्यान करते करते उनको होश रहता है कि आजू बाजू में क्या हो रहा है उसका भी, उसको संप्रज्ञात्मिका बोला जाता है। असंप्रज्ञात्मिका मतलब उनको होश ही नहीं आजू बाजू में क्या हो रहा है, सांप भूख के ऊपर शरीर के ऊपर चल रहा है, चींटियों का ये बन गया, बहुत सारे कीड़े मकोड़े घूम रहे हैं, उनको वो भी ध्यान भी नहीं रहता है, अपने परमात्मा पर ध्यान लगाता रहता है। यह संपूर्ण रूप में पूर्ण तरीके से भगवान के बारे में विचार करना उनके बारे में सोचना उसको समाधि कहा जाता है। तो कभी कभी लोगों का कहना है कंप्लेंट ये है कि भक्त लोग जो है ऐसा लगते हैं कि भौतिक कार्य कर रहे हैं, मार्केट में जा रहे हैं सब्जी वालों के साथ वो वाद विवाद कर रहा है, नहीं नहीं ना कम में जाना कम में मिलना चाहिए, वो सौदा कर रहा है, कभी ऐसा हो सकता है वो पकवान बना रहा है, अनेकों प्रकार के क्रियाओं में युक्त है, तो समाधि में कैसे भगवान के ऊपर ध्यान लगाना चाहिए, ये सब कार्य जो है रजसिक है, वैसे ज्ञानियों का कहना है। लेकिन उनको मालूम नहीं है भक्त भगवान से प्रेम करता है, इसलिए भले ही वो कार्यों में रत है ऐसा लग सकता है बहुत ही कार्य है, लेकिन फिर भी उनका चेतना जो है हमेशा कृष्ण में ही लगा हुआ है, हमेशा कृष्ण के ऊपर लगा हुआ है। तो समाधि मतलब यह नहीं कि बस कहीं और एक जंगल में बैठ के कहीं ध्यान लगा के बैठे वही समाधि है। ये इस प्रकार के भक्ति के कार्य करते हुए भी व्यक्ति समाधि में रह सकता है या समाधि में है। क्यों? क्योंकि कोई पकवान बना रहे भोग बना रहे भगवान के लिए, उनके पास जाके पूछो कि आप किसके लिए बना रहे हो, भले वो नमक के बारे में सोच रहा हो, ये बॉइल हुआ कि नहीं, वो सब मन में ऐसा विचार आ ही रहा हो, लेकिन तुरंत जाकर उनको पूछे ये किसके लिए बना रहे हो, तो मैं कृष्ण के लिए बना रहा हूं। तो ये स्मरण जो है कृष्ण के बारे में हमेशा उनका बैकग्राउंड में रहता ही है। इसलिए ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ ये कहना कि आप दुनियादारी में लगे हुए हो ये भक्त लोग दुनियादारी में लगे हुए हैं, इसका मतलब वो समाधि में नहीं है, ये श्रेष्ठ नहीं है, ये कहना गलत बात है। कुछ ब्रह्म मैयावेश्य मनो ये माम, ये माम यही है, माम मतलब मैं, माम मतलब क्या है। तो जब आपके सामने कोई व्यक्ति आके कहता है मैं मुझे पानी पिलाओ, तो किसको पिलाओगे आप? उसी को पिलाओगे। इसलिए कल इसी बात को चर्चा कर रहे थे कि ये जो भगवद गीता के ऊपर टीका वैष्णव टीका है या कोई अन्य टीका है, उसका माप क्या है, उसका प्रमाण क्या है? प्रमाण यही है कि जहां मन मना भो मत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, ये श्लोक में अगर टीका में लिखा जाता है कृष्ण को, तब वो वैष्णव टीका है। जहां जहां माम शब्द आया, ये माम शब्द का अनुवाद किस तरह कैसे किया जाएगा? कृष्ण के लिए दिया जाएगा। तो देखिए कोई भी ग्रंथ है उसके ऊपर अनेकों प्रकार के टीका किया जा सकता है, वो ये शास्त्रों में ऐसा छूट दिया गया है, ठीक है। इसलिए प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, दस एंड्स द भक्ति वेदांत परपोट्स। हर अध्याय के एंड में क्या लिखा हुआ है, दस एंड्स द भक्ति वेदांत परपोट्स। इसका मतलब क्या है, भक्ति वेदांत का मतलब क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ भक्ति वेदांत? नहीं, अपना नाम नहीं लिखा उन्होंने। हाँ, हाँ हाँ, सारे वेदों का अंत भक्ति है करके स्थापना करने वाले परपोट्स है। ऐसे ये जो भगवद गीता के पारायण में अंत में कहा जाता है कि ओम तत्सदिति श्रीमद भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे, ये योग शास्त्र है। तो ये योग शास्त्र के ऊपर अनेकों योगी लोगों ने टीका लिखा, लेकिन प्रभुपाद जी का जो टीका कैसे रहेगा, भक्ति ही वेदों का सार है करके स्थापना करने वाले परपोट्स है। तो निश्चित रूप में ये जब ये माम आता है तो तुरंत प्रभुपाद जी क्या अनुवाद करेंगे, मेरा स्वरूप का ही आएगा। हाँ, जैसे एक किताब है जिसका शिवराम स्वामी ने लिखा है, प्रभुपाद जी के शिष्य, जिसका नाम ही है भक्ति वेदांत परपोट्स। वो किताब का नाम ही है, वो पीला कलर का बुक है, क्योंकि प्रभुपाद जी की टीका के ऊपर अनेकों लोगों ने बहुत सारे आरोप लगे, बहुत सारे पॉजिटिव भी है, पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव रिपोर्ट्स है कि वो अच्छे हैं, इनका ये वेल कोटेड है, बहुत सारे उनको उनकी पक्ष में, प्रभुपाद के पक्ष में बोलने वाले बहुत सारे हैं, लेकिन विपक्ष में बोलने वाले बहुत सारे विद्वान हुए। एक मद्रास यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने बहुत सारा टीका को ऐसा ऐसा करके उन्होंने इतने कम से कम उन्होंने 500 पॉइंट्स लिखे प्रभुपाद जी के टीकाओं में क्या गलतियां हैं, 500 पॉइंट्स। जब वो उन्होंने अपना ये किताब नहीं लिखा, उन्होंने ऐसा एक प्रेजेंट थीसिस उन्होंने अपना बना के दिया, जब वो चीज उनके शिवराम स्वामी के उनके हाथ में मिला, तब उन्होंने सोचा कि इन लोगों को चुप कराने के लिए तो उसी के विरुद्ध उन्होंने एक किताब लिखा, वो किताब लिखे शिवराम स्वामी, बहुत सुंदर किताब है। जितने भी ऑब्जेक्शन थे, खास करके सबसे पहला ऑब्जेक्शन ये था, कहीं भी योग शब्द आता है प्रभुपाद जी क्या कैसे अनुवाद करते हैं, कृष्ण कॉन्शियसनेस। वो इतना हद तक है कि प्रभुपाद जी को अलग अलग योगों का ज्ञान नहीं है, इसलिए उन्होंने ऐसा लिखा। योगों का ये कर्म योग ज्ञान योग अलग अलग योगों का ज्ञान नहीं है, सब बता रहा हूं यही है उनको बहुत सारा। और जैसे साधारण प्रचलित भाषा में लोगों का कहना यह है कि भक्ति जो है मूर्खों के लिए है और ज्ञान मार्ग जो है बुद्धिमान लोगों के लिए है, और जो रजसिक लोग हैं उनके लिए कर्म मार्ग है। तो ये जो बहुत प्रचलित और सब लोगों के हृदय में गहरे से बैठा हुआ इस प्रकार के गीता का अंडरस्टैंडिंग है, समझ है, उसके विरुद्ध ये टीका लिखा गया है उनका। और एक प्रस्ताव ऐसे बहुत सारे हैं, 500 पॉइंट्स लाइक दिस। तो उसको अच्छी तरह से ये करते हुए उनको जवाब देते हुए रिटर्न दैट बुक, उनका भी और अन्य लोगों का भी, बहुत सारे वेस्टर्न फिलोसफर्स भी ऐसे लिखे हैं, उन सबको सार रूप में कुछ पॉइंट्स लेके जहां जहां कुछ जहां जहां श्लोकों में उनका मेन चीज था उसके ऊपर उन्होंने किताब लिखा है। तो ये जो आपका प्रश्न है एक जस्ट एक प्रश्न जैसा लग सकता है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा ये है, सो मेनी एलिगेशन ऑन प्रभुपाद भगवद गीता। तो उन सबको खंडन करते हुए उन्होंने एक किताब लिखा, वेरी नाइस बुक, कभी चाहे तो पढ़ सकते हैं। प्रभुपाद परपोर्ट से योग का मतलब क्या है, यूज संबंध, संबंध किससे, कृष्ण से संबंध। जनरली संबंध जो है व्यक्ति से होता है, यू हैव कनेक्शन विथ होम पर्सन ना, एक व्यक्ति से संबंध होता है। तो कृष्ण से संबंध, आप अपने कार्यों के द्वारा कृष्ण से संबंध जोड़ो, या अपने ज्ञान के द्वारा कृष्ण से संबंध जोड़ो, या प्रेम से अपने कृष्ण के संबंध जोड़ो, अल्टीमेटली किसके साथ संबंध है आपका, कृष्ण के साथ अल्टीमेटली। सो ही एक्सप्लेन्स लाइक दैट, ऐसा हर एक चीज के ऊपर बाकी अंदर पर कुछ पर्या, मतलब ये इसका मतलब तीव्र, परे मतलब परे बियॉन्ड, या तीव्र भी हो सकता है उसका नाम, मतलब वेरी एक्सट्रीम लव फॉर कृष्णा। श्रद्धया परया, श्रद्धया परया, आपका जो श्रद्धा है ये कैसा, किस प्रकार का श्रद्धा है, ट्रांसेंडेंटल। ऐसे श्रद्धा जो है वो तीनों गुणों के अंतर्गत भी आता है। जैसे मान लीजिए कोई शास्त्रिक या कोई शुद्ध विचार वाले शास्त्रों के ऊपर अपना श्रद्धा है, नजीव ने अपने सात्विक माना जाता है अपने हृदय के शुद्धिकरण के लिए। और एक प्रकार का श्रद्धा है जो रजसिक है, जो इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ कार्य किया जाता है, क्रिया करने के लिए, वो जो है वो रजसिक है। वो तमसिक है, वो खुद की हानि है, दूसरी की हानि है, ऐसे कार्यों में जैसा श्रद्धा है। लेकिन ये जो श्रद्धया परया जो है, ये भक्ति का जो कार्य है, वो कौन सा, किस प्रकार का श्रद्धा है, वो तीनों गुणों से परे श्रद्धा है, ट्रांसेंडेंटल टू थ्री मोड्स ऑफ मेटेरियल नेचर। श्रद्धया परया, इसलिए प्रभुपाद इसका लिखते हैं कि एंड ट्रांसेंडेंटल फेथ, दिव्य श्रद्धा, निर्गुण श्रद्धा, निर्गुण श्रद्धा पर्याय, निर्गुण तीनों गुणों से परे, ये भक्ति का कार्य जो है वो तीनों गुणों से परे होने श्रद्धा। श्रद्धा शब्द का मतलब क्या है आपको, चैतन्य चरितामृत में तो है ही, सुनिश्चय कृष्ण भक्ति वही है, इधर कृष्ण भक्ति का पहले सर्व कर्म कृत है, श्रद्धया परया, ट्रांसेंडेंटल फेथ। हरे कृष्ण, पीछे एग्जाम चल रहा है, हरे कृष्ण, ठीक है, ट्रांसेंडेंटल फेथ। ठीक है। नेक्स्ट, हाँ उसका नाम है भक्ति वेदांत पर्पोर्ट्स, द भक्ति वेदांत पर्पोर्ट्स। हाँ है, स्टॉल में होगा। हाँ पर्पोर्ट नहीं, नाम है उसका भक्ति वेदांत पर्पोर्ट्स, ऐसा वो बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है। इंग्लिश में लिखा हुआ है। शिवराम स्वामी, शिवराम महाराज गौरपुणे में आते हैं ना, बहुत कीर्तन करते हैं, बहुत लंबा कीर्तन करते हैं, स्मारक काम कीर्तन उनका वो ऐसे बहुत गंभीर महाराज। देखिए
जो लोग नहीं मानते साकार को,
अभी भगवद गीता तो थोड़ा सा मुश्किल है, उपनिषदों के ऊपर इतना छूट दिया है, उपनिषद का स्थाई जो है उसको तोड़ हो के संस्कृत ग्रामर के द्वारा अनेकों चीजों के द्वारा आप उसको कोई भी सिद्ध कर सकते हो, वो छूट दिया है शास्त्रों में टू गिव टू इंटरप्रिट लाइक दिस, उन करने के लिए बहुत सारे कर सकते हैं।
जैसे मान लीजिए कहा जाएगा तो भूम पर कहा जाएगा छोटा ही या बड़ा है, इसका निर्णय करना डिफिकल्ट होगा, लेकिन यदि पूछा जाए एक और दो में कौन श्रेष्ठ है तो क्या श्रेष्ठ है, दो श्रेष्ठ है, ठीक है ना। जैसे आप सब देखते शो और तुमने ये पूछा, अगर पहला श्लोक से आप पढ़ेंगे ना 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 आपके पहला वर्ष होगा, और जो पूछ रहा है एवं सदस्य जुटा जे होता श्लोक पार्टी एवं सत्यकारी उन्हें दिया है कि जैसे एकादश अध्याय का बचपन शुरू होती है इसमें साक्षर भक्तियों का वर्णन हुआ है ना,
मंत्र
इसलिए अर्जुन ने इंडिकेट किया केवल जैसे आप देखेंगे छह अध्याय से लेकर के ग्यारह अध्याय तक बीच बीच में भक्तियों का वर्णन हो रहा है, उसके एंड में भगवान ने इसका निष्कर्ष दिया कि मत्कर्म करो तो
मत्कर्मी पांडव
ये जो पिछली बार युद्ध रहे चाहिए उसके लिए कहा, ये तो क्लियर है, ठीक है ना। तो उसी को यहाँ अर्जुन सर है एवं सदस्य का राइट, यानी कि स्वप्न सरकार यहाँ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, आगे ना
पिछले स्तर से कनेक्शन लेंगे तो
कनेक्शन लेना ही पड़ेगा,
लेना तो पड़ेगा
ठीक। इवन भी
ये इससे क्लियर प्रमाणित होगा कि ये स्वप्न सरकार के इंडिकेट किया है। अच्छा आप उसको देखो नौ पंद्रह वर्ष
मां उपास थे,
यानी कि जहां मां शब्द का अर्थ भगवान अपने निर्गुण निराकार रूप को बता रहे हैं, है ना, ये क्लियर है कि नहीं। तो इसलिए दो रूप हुआ कि नहीं,
तो मां तो
पहले तो देखो मां भगवान ने बताया निर्गुण रूप, इसमें बताया सर्वण सर्वण रूप। तो अर्जुन के मन में यही डाउट हो गया कि आपकी कौन सी उपासना श्रेष्ठ है,
सकारात्मक
वाला श्रेष्ठ नौवा का पंद्रह देखो और आठवा का ग्यारह नंबर देखो, आठवा का ग्यारह देखो,
इस तरह से बताइए हम लिख तो भी ले
आठ 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 ग्यारह आठ ग्यारह में जो श्लोक है कवि पुराणम
संसारम अनुरणीयांशम अनुस्मरे यह
सर्वस्य
आधार अचिंत्य रूपम,
अचिंत्य रूपम ये भी मेरा रूप है। तो इसमें भक्ति और ठाकुर ने लिखा है कि अर्जुन बड़े ध्यान से सुन रहा था, उसको ठाकुर ने निराकार की बात की कही और साकार की बात,
दोनों बात होती
है, इसलिए जब एक दो का निर्णय तो इसमें अर्जुन प्रश्न कर दिया।
हाँ
राइट,
निराकार को भी माफ करके
माफ कर रहे हैं, तो एक वो भी माफ है
वो भी माम है
ये,
लेकिन आप ये दोनों माम में से कौन श्रेष्ठ
है? ये है, दिस इज इट।
आपने तो अपने लिखा है तत्व तो एक ही है, तत्व के तत्व तो इसलिए अर्जुन ने कहा कि दोनों माम में से आपसे कौन सी उपासना श्रेष्ठ है, राइट?
आ गया ना आंसर
मेरे साका
अचिंत्य रूपम, अचिंत्य रूपम ये पूरा ये जो छह अध्याय है, पिछले पांच अध्याय में सात से लेके ग्यारह तक, इसमें बहुत जगह एक बार ये एक बार सगुण एक बार निर्गुण, एक बार सगुण एक बार निर्गुण, इसलिए ये इस पे कन्फ्यूजन था अर्जुन का, इस पे कन्फ्यूजन था अर्जुन का कि आप बार बार कभी ज्ञान बताते हो कभी भक्ति बताते हो और कभी कभी माम मतलब सूचित करते हो कि मेरा निराकार तत्व का सूचित करते हो कभी मुझे।
अच्छा, इसी श्लोक में सात अर्जुन पर है, एवं सतत रूप का मतलब निमित्त
अव्यक्त,
इससे पहला वाला सीधे सही तो हो रहा है
ना, आया पूरे श्लोक के और जैसे कि आपकी तो कंफ्यूजन हो गया है, आपको बोला और चीजें मेरे दिमाग में बात आ गई, आकार कृष्ण ही रूप कर रही है कि फाइनल श्लोक कौन सा हुआ?
नहीं नहीं वो ही तुरंत जवाब देते हैं ना, इधर मय्यावेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परया उपासते मैं युक्ततमा मता। तो नेक्स्ट चौथा एकक्षरम निर्देशम अव्यक्तम उपासते सर्वत्रमचिंत्यम च ऊटस्थम अचलम ध्रुवम संयमेन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्ध्या ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूता हिते रता। ये दो श्लोक में किन का वर्णन हो रहा है? निर्विशेष वाली। तो कल इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा किए थे, निर्विशेष वाली या ब्रह्मवादी में मायावादी में अंतर है। ये जिन श्लोकों को मरने तक हो रहा है ये मायावादियों के बारे में नहीं हो रहा है, ये बात को ध्यान रखना चाहिए। इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट मायावाद। ये तो अक्षरम, अक्षरम मतलब क्या है? प्रभुपाद लिखते हैं कि जो इंद्रियों से परे है, इंद्रिय हमारे इंद्रियों से ग्रहण करने परे है। अक्षरम अनिर्देश्यम, जिनको शब्दों के द्वारा वचनों के द्वारा वर्णन नहीं कर सकते, इनडेफिनेट। अव्यक्तम जो दृश्य नहीं है हमारे सामने, व्यक्त नहीं है। ये तीनों ब्रह्म के गुण हैं। है क्या ये ब्रह्म? व्हाट इज दिस ब्रह्म? भगवान के शरीर का कांति, चैतन्य चैतन्यामृत में इस बात को कहा गया है स्पष्ट रूप में।
यद ब्रह्मोपनिषद तदप्यस्य तनुभा, तनुभा मतलब भगवान की शरीर का तेज है। और इसका लक्षणों को बताते हुए भगवान भगवद्गीता में ये कहते हैं कि इस ब्रह्म का स्रोत कौन है, मैं स्वयं ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम अव्ययस्य च अमृतस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखम एकांतिकस्य च। ये बार बार प्रभुपाद ये श्लोक को कोट करते हैं। जब भी ये ब्रह्म का वर्णन आता है तो ब्रह्म का आधार कौन है, भगवान स्वयं है। और ब्रह्म का स्वभाव क्या है, अक्षरम अनिर्देशम अव्यक्तम। ये ब्रह्म भी तीनों गुणों से परे है। तो अगर कभी कभी इस ब्रह्म को माम रूप में अगर संबोधित करते हैं भगवान, कोई अंतर नहीं, क्योंकि माम मतलब मेरा है, इज माइंड। ब्रह्म भी किसका है, भगवान का ही है। ये बात को ध्यान रखना चाहिए। अजय देश हम व्यक्तम परिपास थे सर्वत्र कम, वो हर जगह व्याप्त है, अचिंत्य है, हमारे चिंतन से परे है, कूटस्थ है। कूटस्थ ये कभी परिवर्तन नहीं होता है, अचल कभी हिलता नहीं चलता और हिलता नहीं है, ध्रुवम एकदम स्थिर है। ये सब ब्रह्म के लक्षण हैं। संयमेंद्रिय ग्राम सर्वत्र समबुद्धया ते प्राप्त होती। कोई ब्रह्म को प्राप्त करने वाले कौन है, उपासना करने वाले हैं, सारे इंद्रियों को नियंत्रण में रखने वाले हैं, वो भी बहुत तपस्या करते इंद्रियों को नियंत्रण में रखते हैं। और समबुद्धया सबके प्रति समान बुद्धि रखते हैं। और ये सब कुछ करने के बाद ते प्राप्त माम एव, ते प्राप्त वो अंततः मुझे ही प्राप्त करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। ब्रह्म ज्योति को प्राप्त करते हैं, दे अटेन ब्रह्म ज्योति। इसका मतलब क्या है, ब्रह्म भी किसका है, कृष्ण का ही है। तो इन ऑर्डर टू परसीव सुपर सोल, दूसरा पैराग्राफ पढ़िए इसका।
इसमें लिखिए मुझे प्राप्त करते हैं, इस मुझे से ऐसा लगता है कि भगवान को प्राप्त करते हैं कि ब्रह्म को प्राप्त करते हैं।
देखिए जैसे प्रभु जी ने इस बात को उल्लेखन किया था, भले ही ब्रह्म हो या भगवान का स्वरूप हो, वो दोनों भी वदंती तत्तत्व तत्वम विज्ञानम अध्ययम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान ने शब्द थे। वो परम सत्य ही है, वो परम सत्य के अंतर्गत एक है सकार जो जो मूल भगवान के रूप है, और उनसे उत्पन्न हुआ ब्रह्म। अंततः क्या है, अंततः परम सत्य है, ब्रह्म भी परम सत्य है, परमात्मा भी परम सत्य है, और भगवान भी परम सत्य है, एब्सोल्यूट ट्रूथ है। लेकिन इन तीनों में, तीन में से अभी दो का चर्चा हो रहा है, इन दो में क्या श्रेष्ठ है उसका चर्चा हो रहा है। ते प्राप्तवंती मामेव सर्वभूत हितेरता। तो इधर जब माम बोला जाता है वो कृष्ण का साकार रूप है, अल्टीमेटली ब्रह्म भी कृष्ण ही है ना, पर ब्रह्म है, ये बात मानना चाहिए। अगले श्लोक में क्यों ये जो ब्रह्म को उपासना करने वाले ये श्रेष्ठ नहीं है, भगवान को उपासना करने वाले श्रेष्ठ है, वो क्यों है, उसका कारण बताते हैं। He gives the reason. Fifth, क्या है वो, दस्तेषाम अव्यक्ता सक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गति दुःखम देह विभ्रवाप्यते। क्लेशोधिकतरस्तेषा, अनुवाद पढ़िए इसका।
जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त हैं, उनके लिए प्रगत कर पाना अत्यंत कष्टकर है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगत कर पाना सदैव कष्टकर
क्लेशो अधिकतर स्तेषाम, बहुत सारे क्लेशों से युक्त है। कौन सा मार्ग है? ज्ञान मार्ग के द्वारा ब्रह्म की उपासना करना, ये बहुत मुश्किल है। क्लेश क्यों, क्लेश क्यों है इसके अंदर? वाई हाँ, मेन चीज ये है कि हमारा स्वभाव है कोई रूप का उपासना करना और कोई एक व्यक्ति का उपासना करना या व्यक्ति से संबंध जोड़ना, ये जीव का स्वभाव है, नेचुरल नेचर है, जिसे आत्मा का स्वभाव है, वेरिगेटेडनेस। तो ये ब्रह्म का ऐसा गुण है कि इसको उपासना करना और उनके मन में बैठाना बहुत मुश्किल है, इट इज वेरी डिफिकल्ट। इसलिए उपनिषदों में भगवान की कभी कभी रूप और गुणों का वर्णन हुआ है और निर्गुणम अरूपम ऐसा ही वर्णन हुआ है भगवान का। ये क्यों हुआ है? वाई हाँ, क्यों हुआ? क्योंकि भगवान साकार भी है और निराकार भी है। क्योंकि अगर भगवान को वर्णन करना हो तो दोनों प्रकार वर्णन होना चाहिए। और दूसरी बात, अगर भगवान का निराकार रूप का वर्णन नहीं किया जाता है, अगर उसका वर्णन नहीं किया जाता तो क्या होगा? जब भगवान का साकार रूप का वर्णन देखेंगे तो तुरंत लोग सोचेंगे, क्या सोचेंगे? इनका जो स्वरूप है मेरे जैसा ही है, इनका जो सुंदरता है वो मेरे जैसे सुंदरता है। तो सबसे पहले ये जानना चाहिए कि भगवान की जो रूप है या गुण है भौतिक नहीं है। ये भौतिक नहीं है करके स्थापना करने के लिए सबसे पहला इस बात को कहा गया है, भगवान के पास कोई रूप नहीं है, कोई इंद्रिया नहीं है, कोई उनका रंग नहीं है, वगैरह नहीं है। अगर ये वर्णन नहीं होता, सीधा ब्रह्म संहिता में जैसे वर्णन है श्यामम त्रिवंगलितम वेद प्रकाशम गोविंदम ऐसे से होता तो तुरंत कंपेयर करने लगेंगे, क्या मेरे से सुंदर है क्या, कि मेरे जैसे है क्या, उनका आंख मेरे जैसे आंख है, कंपैरिजन हो जाता है। इसलिए सबसे पहले नेगेशन की आवश्यकता है। नेगेशन मतलब भगवान के पास आंख नहीं है, मतलब हो बाद में वर्णन आता है भगवान के पास बहुत सुंदर आंख है। अगर केवल यही वर्णन किया जाए कि भगवान के पास सुंदर आंख है तो क्या होगा? अपने से कंपेयर करेंगे। तो जहां जहां ये नेगेशन है, यानी ना इति ना इति, भगवान इस प्रकार नहीं है, इस प्रकार नहीं, उनके पास इंद्रिया नहीं है, उनके पास गुण नहीं, उनके पास रूप नहीं है, अरूपम, ये क्यों है? क्योंकि हमारे पास जिस प्रकार की इंद्रिया है उस प्रकार उनके इंद्रिया नहीं है, हमारे पास जिस प्रकार के रंग है रूप है उस प्रकार का रूप रंग भगवान का नहीं। इस बात को स्थापना करना। तो क्लेशों की तरह तेषाम अव्यक्ता सत्चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम, अव्यक्ता ही क्लेशो, ये जो अव्यक्त को उपासना करने वालों का जो स्थिति है, साधना और साध्य। साधना मतलब क्या है? बड़ी जमीन में साधना उत्पाने के लिए साधना। साध्य मतलब क्या है? जिसको प्राप्त करेंगे, या एक है रास्ता एक है दूसरा,
मतलब जिस चीज को मैं
प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहा हूं, द डेस्टिनेशन। जैसे आप इधर से मंदिर जाओगे, मंदिर जाने का एक रास्ता है, मंदिर है, दोनों में अंतर है। तो वैसे ही साधना और साध्य ये दोनों क्लेश से युक्त है, क्लेशों से युक्त है साधना और साध्य दोनों। अव्यक्ता ही गतिर दुखम, उनका गति भी दुख है और उनका रास्ता भी क्लेशों से युक्त है। रास्ता जो है उनका साधना क्लेशों से क्यों है? और दूसरा उनका साधना जो है बहुत कठोर परिश्रम से युक्त है। एक तो उनको उपनिषदों का अध्ययन करना, उसके लिए संस्कृत ज्ञान मालूम होना और बहुत सारा तीव्र तपस्या करना, और ये बहुत अस्वाभाविक है, इट इज वेरी अननेचुरल थिंग। और संन्यास लेना, ये कोई व्यक्ति ज्ञान मार्ग को इधर गृहस्थ आश्रम में रहते हुए स्वीकार करना बहुत मुश्किल है, इट्स वेरी डिफिकल्ट, और कोई इसको अनुमति भी नहीं देता। और अंततः क्या गंतव्य को प्राप्त करेंगे? ब्रह्म ज्योति को प्राप्त। तो ब्रह्म ज्योति को प्राप्त करना भी, वो भी दुख है। क्या है दुख उधर, क्या है उधर दुख? ठीक है, वापस आने की बात छोड़िए,
निष्क्रिय
निष्क्रिय अवस्था में पहुंचना, जैसे उधर प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर इस बात को कहते हैं, कैवल्यम नरकाय थे, कैवल्यम नरकाय थे। कैवल्य जो है वो नरक समान है। क्यों नरक के समान है उधर? क्योंकि क्योंकि जीव का जो स्वाभाविक स्थिति है, क्या वो स्थिति, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, उनका मौका नहीं मिलता। जीवेर स्वरूप है कृष्ण, इसका मौका नहीं मिलता, इसलिए उसको क्या कहा गया है, गतिर दुखम। खास करके देह वापते अवापते, तो देहधारी जीव के लिए अति मुश्किल है करके ये श्लोक में कहा गया है। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में इस बात को स्पष्ट रूप में कहते हैं, हाँ पढ़िए,
ज्ञान योग का पथ मनुष्य को उसी लक्ष्य तक पहुंचाता है कि है अत्यंत कष्टकारक, जबकि भक्ति योग भगवान की प्रत्यक्ष सेवा होने के कारण सुगम है और देहधारी के लिए स्वाभाविक भी है। जीव अनादिकाल से देहधारी है, सैद्धांतिक रूप से उसके लिए यह समझ पाना अत्यंत कठिन है कि वो शरीर नहीं है। अतः भक्ति योगी कृष्ण के विग्रह को पूर्ण मानता है, क्योंकि उसके मन में कोई न कोई शारीरिक बोध रहता है।
बस इसके अंदर प्रभुपाद जी अर्थ विग्रह के बारे में कहते हैं, हाँ भगवान का जो अर्थ विग्रह का जो रूप है इसके बारे में थोड़ा सा कहते हैं, वो बड़ी क्रूड एग्जाम्पल।
यहाँ पर एक मोटा उदाहरण दिया जा सकता है, सड़कों के किनारे पत्रकारिताएं होती हैं, जिनमें यदि हम अपने पत्र डाल दें तो वे बिना किसी कठिनाई के अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाते हैं, लेकिन यदि कोई ऐसी पुरानी पेटिका या उसकी अनुकृति कहीं दिखे जो डाकघर द्वारा स्वीकृत न हो तो उसमें कोई कार्य नहीं हो सकेगा। इसी प्रकार ईश्वर ने विग्रह रूप में, इसे अर्चा विग्रह कहते हैं, अपना प्रामाणिक वैध स्वरूप बना रखा है। यह अर्चा विग्रह परमेश्वर का अवतार होता है, ईश्वर इसी स्वरूप के माध्यम से सेवा स्वीकार करते हैं। भगवान सर्वशक्तिमान है, अतः वे अर्चा विग्रह रूपी अपने अवतार से भक्त की सेवाएं स्वीकार कर सकते हैं, जिससे बद्ध जीवन वाले मनुष्य को सुविधा हो।
हाँ, तो वही सकार रूप भगवान का, उसका पूजा उपासना करने के लिए, सेवा करने के लिए भगवान एक विशेष रूप धारण करते हैं, जिनका नाम है अर्चावतार। अर्चावतार एक बार प्रभुपाद से पूछा गया था कि आप बहुत सारे भगवान ने बहुत सारे अवतार दिए, अभी क्यों नहीं लेते, वाई इज नॉट टेकिंग इंकार्नेशन। प्रभुपाद ने कहा कि अभी भी ले रहे हैं, जैसे मैं नया मंदिर खोलता हूं और एक अवतार। तो ये अर्च विग्रह का पूजा से हमारे मन में जो निर्विशेष के प्रति आकर्षण है वो निकल जाता है। श्रीपाद रामानुजाचार्य का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था कि मायावाद का खंडन करके लोगों के मन में जो निर्विशेष की धारणा है उसको निकालना। उसके लिए उन्होंने एक महान साधन को स्थापना किया, वो है पंचरात्रिक विधि। ये पंचरात्रिक विधि के द्वारा ये आचार्य सारे जगत में निर्विशेषवाद को निकाल देते हैं। इस प्रभुपाद जी का एक मंत्र में क्या है, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारण। खास करके पाश्चात्य देश में ये दोनों प्रकार के लोग खड़े हुए थे, निर्विशेष और शून्यवाद। शून्यवाद मतलब बुद्धिस्ट और निर्विशेषवाद मतलब निराकारवादी है। जो निर्विशेष मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ निर्विशेष, विशेष मतलब स्पेशलिटी क्वालिटीज, जो इस बात को कहते हैं कि भगवान के पास कोई गुण नहीं है, निर्गुणम निर्विशेषम। खास करके रामानुजाचार्य इस बात के ऊपर बहुत जोर देकर कहते हैं कि भगवान गुणों से युक्त है, ही इज फुल ऑफ ऑस्पिशियस क्वालिटीज। भगवान के पास कोई गुण नहीं है करके जो स्थापना करने वाले हैं उनको निर्विशेष कहा जाता है, दे आर कॉल्ड निर्विशेष। उसके बाद रामानुजाचार्य एक श्लोक की व्याख्या करते हुए उपनिषदों का एक बड़ा इसके ऊपर बहुत चर्चा चलता रहता है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मा। निर्विश्वासवादियों का कहना यह है कि जो ब्रह्म है वही सत्य है, वही ज्ञान है और वही अनंत है। लेकिन श्रीपाद रामानुजाचार्य स्थापना करते हैं कि ब्रह्म जो है, ब्रह्म के लिए तीनों सत्यम ज्ञानम अनंतम, ये तीनों ब्रह्म के गुण हैं, दे आर द क्वालिटीज ऑफ ब्रह्म। अनंतम अनंत ब्रह्म अनंत, ये तीनों क्या है, ब्रह्म के गुण हैं, दे आर द क्वालिटीज ऑफ ब्रह्म। निर्विशेष शून्यवादी, सत्यम ज्ञानम अनंतम, ये तीनों ब्रह्म के गुण हैं। क्योंकि जब जब जहां जहां उपनिषदों में अन्य जगह गुणों का वर्णन आता है वो निर्विश्वास करती कि ये जो है गुण अस्तित्व में उनके गुण नहीं है बल्कि ये व्यवहारिक है, व्यवहारिक भाषा में है। जैसे हमको गुण देखने का ऐसा आदत हो चुका है, इसे व्यवहारिक तरीके से बोला गया अस्तित्व में उनके गुण नहीं होता, ब्रह्म ही सत्य है, ब्रह्म ही ज्ञान है, ब्रह्म ही अनंत है, दे आर नॉट द क्वालिटीज। ये इतना गहराई में हम इधर नहीं जाएंगे, वी नॉट गोइंग टू दिस थिंग, पॉइंट इस इतना तक जानना चाहिए कि ये निर्विशेष का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ निर्विशेष। निर्विशेष का मतलब जो ऐसे सिद्धांत को स्थापना करते हैं ये कहना कि भगवान के पास कोई गुण नहीं है, कोई विशेषता नहीं है। तो अच्छा विग्रह का हो गया, इस पैराग्राफ में और एक पॉइंट था, रूप निर्विशेष विशेष हाँ, रूप गुण लीला एक्टिविटीज
रूप नहीं है तो ये तीनों
अपने आप में रूप, रूप भी नहीं होना, जिनका रूप नहीं है, जिनका गुण नहीं है, जिनका क्रिया नहीं है,
इसका रूप नहीं है तो गुण अपने आप
हाँ वो बात भी है। नेक्स्ट नेक्स्ट भगवान कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्ता मयावेशित चेतसाम। ये दो श्लोक किसके बारे में है? अहम। ये दो श्लोक किसके बारे में चर्चा किया जा रहा है? जो भक्त है उनके बारे में चर्चा। ये दो श्लोकों में भगवान भक्तों के प्रति कितना वात्सल्य है वो दिखा रहे हैं। हाउ मच ही इज अफेक्शनेट टू हिज डिवोटीज। पहला श्लोक में कहते हैं कि मैं अपने भक्तों से इतना प्रेम क्यों करता हूं, वाई आई लाइक माई डिवोटीज, में इतना प्रेम उनके प्रति क्यों है। हेतु सर्वाणि कर्माणि मई सन्यस्य मत्परा। ये दूसरे अध्याय में भी ये मत्परा शब्द आया, याद होगा, सेकेंड चैप्टर मत्परा। प्रभुपाद जी इसके ऊपर भी बलदेव विद्याभूषण का कमेंट्री कोट करते हैं। मत परहा का मतलब क्या है? व्हाट इज एक्सप्लेनेशन गिवन? मत परा भक्त कौन है? अम्बरीश महाराज का उदाहरण देते हैं दूसरे अध्याय में, आपको याद होगा तो, बहुत दिन हो गया होगा। मत परहा दूसरे अध्याय पढ़ के नाइन ना 61 मत परा इज मोस्ट सिग्निफिकेंट कनेक्शन। मत परा का क्या व्याख्या करते हैं? व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन 261 में? बलदेव विद्याभूषण रिमार्क्स, मत भक्ति प्रभावेन सर्वेंद्रिय विजय पूर्वैक स्वात्म दृष्टि सुलभेति भावः। इसका मतलब क्या है? इन्हें पढ़िए। हेतु 61 का तात्पर्य में
इस श्लोक में बताया
है। नहीं, तात्पर्य में एक जगह मत पर रहा लिखा था।
इंद्रियों को केवल कृष्ण की भक्ति के बल से वश में किया जा सकता है। कभी कभी अग्नि का भी उदाहरण दिया जाता है। इस प्रकार जैसे भी अग्नि कमरे के भीतर की सारी वस्तुएं जला देती है, उसी प्रकार योगी के हृदय में स्थित भगवान विष्णु सारे मतों को जला देते हैं। योग सूत्र भी विष्णु
का ये मत परा भक्त कौन है? उदाहरण में उस तात्पर्य में किसका उल्लेखन किया गया है? अम्बरीश महाराज का। मत भक्ति प्रभावेन सर्वेंद्रिय विजय, सारे इंद्रियों के ऊपर कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं? मत भक्ति प्रभावेन, भगवान की भक्ति को। अम्बरीश महाराज का ये विशेषता यह है कि उन्होंने नवधा भक्ति के सारे अंगों को किया, पालन किया, श्रवणम कीर्तनम विशेषम सारे, ऑल 9 टाइप्स। परीक्षित महाराज श्रवण के आचार्य है, परीक्षित सुखदेव गोस्वामी कीर्तन के, प्रहलाद महाराज स्मरण के, और अम्बरीश महाराज जिसकी वजह से सारे इंद्रियों को भगवान की सेवा में उन्होंने लगाया था। सवई मन कृष्ण पदारव इंद्रियो वाचाम स्वैकुंठ गुणान। तो ये इतना तीव्र भक्ति करने की वजह से योगियों को अनेकों प्रकार की तपस्या करने के बाद भी इंद्रियों को अपने वश में नहीं रख सकते, लेकिन भक्त लोग बहुत सुलभ बहुत आसान से इंद्रियों को नियंत्रण में रख सकते। क्यों, कैसे? क्योंकि वो मत परहा भगवान की भक्ति में इतने तत्पर रहते हैं कि उनकी इंद्रियां कहीं भी इधर उधर भौतिक कार्य में नहीं जाता, नॉट गो देयर। इससे ये भक्तों को इंद्रियों को कंट्रोल करने बहुत
आसान, वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल जो इंद्रियों को कंट्रोल करना है, लेकिन वो भक्त लोग आसान से कर लेते हैं, वेरी इजिली कैन दे कैन डू। क्यों? क्योंकि मत भक्ति प्रभाव है ना। ये तो सर्वाणि करणानि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनेन्येनैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य, सारे कार्यों को केवल मेरे लिए ही करते हैं, मुझे अर्पण करते हुए करते हैं, मेरे प्रति इतना आसक्त हो जाते हैं। अनन्येनैव योगेन, कोई और अपना ध्यान को केंद्रित नहीं करते हुए, ध्यायंत माम उपासते, मेरी उपासना करते हैं। ये भक्तों का, शुद्ध भक्तों का लक्षण है। क्योंकि मेरे भक्त इस प्रकार करते हैं तो तेषां, वैसे लोगों को अहम, अहम मतलब स्वयं मैं, समुद्धारता मृत्यु संसार सागरात, ये मृत्यु संसार से मैं स्वयं उनको उद्धार करता हूं। भवामी न चिरा, ये नहीं कि बहुत समय के बाद, तुरंत पार्था। क्यों? मैया आवेशित चेतसा, उनका चित्त जो है, उनका चेतना जो है, मेरे प्रति इतना आवेशित है, कंप्लीटली एंग्रॉज इन थिंकिंग ऑफ। ये श्लोक को श्रीपाद रामानुजाचार्य कोट करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण एक प्रसंग। आप दक्षिण भारत में गए कांचीपुरम कभी? वेंट कांचीपुरम, कांचीपुरम में वरदराज जी से प्रार्थना करते हैं श्रीपाद रामानुजाचार्य। वो कहते हैं कि मुझे आप कुछ डायरेक्शन दो, कुछ ऐसा मार्गदर्शन दो, मैं वेदांत सूत्र के ऊपर व्याख्या करना चाहता हूं, तो श्री भाष्य की रचना करना चाहता हूं, जो मेरे गुरु यमुनाचार्य का एक इच्छा है, तीन इच्छाओं में से एक इच्छा है। तब वरदराज जी रामानुजाचार्य को 7 पॉइंट्स देते हैं, गिविंग 7 पॉइंट्स, उनमें से एक पॉइंट सुनेंगे तो बहुत ये हो जाएंगे। कि कहते हैं कि तुम इसके ऊपर व्याख्या करो, अगर जीवन भर कोई मेरा भक्त मेरा ही सेवा में करते हुए पूरा मेरे सेवा में जुड़ जाता है, किसी कारणवश अंतकाल में मेरा स्मरण नहीं कर पाता है, फिर भी मैं उसको उद्धार करता हूं, और तुरंत ये श्लोक आता है, तेषाम अहम, वैसे लोग जो इस प्रकार पहले श्लोक के अनुसार जो अपने जीवन यापन किए, मैं स्वयं आके क्या करता हूं, उन लोगों को उद्धार करके भूल जाता हूं। यानी अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, उसको पालन नहीं करने पर भी चलेगा। एतावान सांख्य योगाभ्याम कर्मयोग परिनिष्ठया जन्म लाभ परपुंसा अंते नारायण स्मृति है। यानी दूसरे शब्दों में इसको सार रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जो भक्त ये छठा श्लोक के अनुसार जीवन यापन करता है, भले ही उसकी साधना में कहीं इधर कमी हो भी गया हो, उनको चिंता करने की जरूरत है, भले ही साधना में कमी है, इवन दो देर इज सम डिफेक्ट इन साधना, कुछ पूर्णता नहीं भी हो पा रहा है, चलेगा, क्योंकि मैं हूं। ये श्लोक के साथ और एक कनेक्शन वाला श्लोक है, इसका एक्सप्लेनेशन मैंने पूछा था उनसे, भानु महाराज से पूछा था, उन्होंने कहा था कि भागवतम में जो भी उदाहरण दिया जाता है ऑलवेज एक्सट्रीम उदाहरण दिया जाता है। एक
विशेष चीज को प्रस्तुत करने के लिए एक ऐसा उदाहरण दिया जाता है ताकि उसका उल्लेखन बहुत अच्छी तरीके से हो पाए। ऐसे हरि नाम का महिमा, उसका उल्लेखन कैसे किया, एक तीव्र एग्जाम्पल है अजामिल, वो जनरल नहीं होता है, इट इज नॉट ए जनरलाइज थिंग, एक्सट्रीम एग्जाम्पल के द्वारा समझाया जाता है। भरत महाराज के प्रसंग में भक्ति का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है साधु संघ। साधु संघ का महिमा का स्थापना करने के लिए भरत महाराज का इस प्रकार का दृष्टांत दिया गया है ताकि अस्तित्व में भाव स्थायी भाव तक पहुंचने पहुंचा हुआ व्यक्ति नीचे कभी गिरता नहीं है। भक्ति साधु संघ में स्पष्ट रूप में लिखा हुआ है नीचे आने का कोई संभव ही नहीं है, लेकिन जो स्थायी भाव में जाने के बाद भी साधु संघ नहीं मिलता है तो जिस प्रकार भरत महाराज का हुआ वैसे आपका भी होगा। लेकिन फिर भी भरत महाराज का कुछ नुकसान नहीं हुआ, अगले चरण में भी वो कहां थे, वो साधुओं के आश्रमों के बाजू बाजू में घूम रहे थे, है कि नहीं। तो भागवतम के एक एक प्रसंग में थोड़ा सा विचार करके देखना चाहिए, नॉट जनरलाइज सिस्टम, ऑलवेज विल बी एक्सट्रीम एग्जाम्पल्स इन द भागवतम। तेषाम अहम समुद्धर्त मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात पार्थ मैयावेश चेतसाम। प्रभुपाद जी इसके ऊपर बहुत लंबा परपोट देते हैं, वो ये है भगवान कहते हैं ना योगक्षेमं वहाम्यहम् अनेन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जना परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहामि अहम्। उनका योग और क्षेम को कौन देखभाल करते हैं, स्वयं देखभाल करते हैं। वहाम्यहम् कृष्णाचक्र ठाकुर कहते हैं कि वैसे भक्तों को भगवान उस प्रकार देखभाल करते हैं जिस प्रकार मां अपने बच्चों को सीने में लगा के देखभाल करती है, स्तनों को लगा के देखभाल करती है। वहामी हम, वहामी वहामी का मतलब सीने से लगा के ऐसा करना, कंधे में ढोक के लेके जाना है ना ऐसा। मुझे मैं लेक्चर में इस बात को सुना, सीने से लगा के जाना है ना, कंधे पे ढोक कर पहुंचाना, वहां भी क्या है ढोकर लेके, ढोकर लेके जा रहे
हैं।
भगवान को तो कृष्ण ऐसा रहे बस,
कृष्ण उसका भार उठा
छाती में लगा के, मैंने सुना छाती पे लगा के लिखे,
हमारा इस्लाम का फोटो भी वैसा ही
है। कैसा है कैसे लिखे दोनों वर्णन है,
तो
ये वॉट एन इज जस्ट चलो नेक्स्ट वहां
तो
ये तो बहुत बार लेके गए कैसे लेके गए कैसे भी लेके गए, लेके गए जरूर। नेक्स्ट 8, 9, 10 तात्पर्य आप पढ़ लीजिए, इसके अंदर इतना यू हैव गॉट। ये जो ये पढ़िए या वही साधन संपत्ति वो वाला श्लोक,
परम स्थानम अच्छा
इसका तात्पर्य पूरी है,
तात्पर्य यह है कि वैकुंठ लोक में आत्मा को ले जाने के लिए भक्त को अष्टांग योग साधने की आवश्यकता नहीं है, इसका भार भगवान स्वयं अपने ऊपर लेते हैं। वे यहाँ पर स्पष्ट कह रहे हैं कि जो स्वयं ही उद्धारक बनते हैं, बालक अपने माता पिता द्वारा अपने आप रक्षित होता रहता है, जिससे उसकी स्थिति सुरक्षित रहती है। इसी प्रकार भक्त को योगाभ्यास द्वारा अन्य लोगों में जाने के लिए व्यर्थ करने की आवश्यकता नहीं होगी, अपितु भगवान अपने अनुग्रहवश स्वयं ही अपने पक्षी धाम गरुण पर सवार होकर तुरंत आते हैं और भक्त को भवसागर से उबार लेते हैं। कोई कितना ही कुशल तैरा क्यों न हो और कितना ही प्रयत्न क्यों न करे, इन समुद्र में गिर जाने पर वो अपने को नहीं बचा सकता, किंतु यदि कोई आकर उसे जल से बाहर निकाल ले तो वो आसानी से बच सकता है। इसी प्रकार भगवान भक्त को इस भवसागर से निकाल लेते हैं। मनुष्य को केवल कृष्णावना की सुगम विधि का अभ्यास करना होता है और अपने आप को अनंत भक्ति में प्रवृत्त करना होता है। किसी भी विद्यमान व्यक्ति को चाहिए कि वह अन्य समस्त मार्गों की अपेक्षा भक्ति को चुने।
ये इसका पिक्चर भी है ना, उसका पेंटिंग है, एक समुद्र में ऐसा डूब रहा है, ऐसा हाथ लगा हुआ है, बहुआ ना क्यों जहाज जहाज है, जहाज नहीं है, गरुड़ के ऊपर बैठे हैं और नीचे वो समुद्र में डूबा जा रहा है और उनको उठा के बैठे हैं। हम समुद्र का मृत्यु संसार सागर है। एक मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मयैव अथ ऊर्ध्वं न संशय। अभी भगवान ये आगे आने वाले चार श्लोकों में अलग अलग प्रकार की भक्तों का वर्णन करते हैं और उनमें से सर्वश्रेष्ठ भक्त का उन्हें वो भी वर्णन करते हैं। सारे योगियों में भक्त श्रेष्ठ है, इन भक्तों में भी कौन श्रेष्ठ है? जो शुद्ध भक्त है वो श्रेष्ठ है। तो शुद्ध भक्त का लक्षण आठवां श्लोक में है, द प्योर डिवोटीज क्वालिटी। नमस्कार, मत पढ़िए।
मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निसंदेह मुझ में सदैव बास करो।
ये श्लोक में मई एव मन आदस्त्वा मई बुद्धि निवेशया निवशिष्यति मई एव, कितने बार आया मई?
तीन बार
आया। तो ये सूचित करता है मई एव मतलब मेरी निजी जो श्याम सुंदर वाले जो रूप है उसके ऊपर अपने मन को लगाओ, अपनी बुद्धि को लगाओ। अथ ऊर्ध्वम न संशय, इससे परे इससे ऊर्ध इससे बढ़कर और कुछ है नहीं, देयर इज नथिंग बियॉन्ड दिस। अथ ऊर्ध्वम न संशय, इसके अंदर कोई ये जो स्थिति है शुद्ध भक्त गोपियां हैं और अन्य भगवान के परिकर रहे, उन्होंने दिखाया कि जब उद्धव जाके गोपियों ने कहा कि आप क्यों शोक करते हो भगवान के लिए, अपना कार्य में लगे रहो, ध्यान लगाओ। तब उन्होंने क्या कहा था भगवान को, हम चाहते हैं भगवान को भूलना लेकिन हो नहीं पा रहा है। इस प्रकार की जो शरणागति है केवल भगवान का दर्शन करते ही तुरंत शरणागत हो गए, ये जो स्थिति है उनका द्विज पत्नियों का स्थिति है। ये जो श्लोक का एग्जाम्पल इस प्रकार के भक्तों का उदाहरण दिया जा रहा है द्विज पत्नियों का। भक्ति विद्या पूर्ण महाराज के ये जो चार श्लोकों के ऊपर एनालिसिस में उन्होंने ये इन लोगों का उदाहरण दिया था, गिवन दिस एग्जाम्पल फॉर दैट। सरेंडर एट द फर्स्ट साइट, भगवान के बारे में खूब श्रवण किए थे द्विज पत्नी लोग, लेकिन जैसे कृष्ण का दर्शन किए लाइक सरेंडर एट द फर्स्ट साइट, इट कॉल्ड प्योर डिवोटीज शुद्ध भक्त। मई एव नाद स्वा मई बुद्धि निवेशया मई निवशिष्टमयी एव अथ ऊर्ध्वम न संशय निवशिष्यति लिव ओनली फॉर मी दस यू विल लिव मी लिव इन मी ऑलवेज विदाउट एनी डाउट. One who does not engage in such service cannot understand how this is so, although this is the process recommended in Bhagavad Gita and various scriptures. ठीक है, अभी कोई प्रश्न उठा सकता है कि ठीक है ये स्थिति तो मेरा नहीं है, क्या मैं भक्त नहीं बन सकता, मेरी तो ये स्थिति नहीं है. भगवान बोले चिंता मत करो, फिर भी तुम मेरे भक्त बन सकते हो, लेकिन इससे थोड़ा सा सेकंड स्टर क्या है वो सेकंड स्टर अथ चित्तम समाधान, इससे परे और कुछ है ही नहीं. यानी ये जो लोग हैं ये भक्तों में टॉप मोस्ट है. ठीक है, ये भक्तों में ये लोग टॉप मोस्ट है. ठीक है, ऐसा टॉप मोस्ट प्रकार का भक्त मैं नहीं हूं, आई एम नॉट लाइक दैट. मुझे क्या करना है उसके बारे में भगवान कहते हैं, अत चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुम धनंजय. ठीक है, अत चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम. भगवान क्या कहते हैं इधर, इस प्रकार का तुम्हारा चित्त नहीं है, यानी इस प्रकार मेरे में आवेश नहीं है. न शक्नोषी मई स्थिरम, और तुम्हारा मन को मेरे प्रति स्थिर नहीं रख पा रहे हो, तो क्या करो, अभ्यास योगेन ततो, क्या करो, अभ्यास करो. अभ्यास मतलब क्या है, साधना भक्ति. तो प्रभुपाद जी के तात्पर्य का पहला पैराग्राफ पढ़िए.
इस श्लोक में भक्तियों के दो पृथक पृथक विधियां बताई गई, पहली भी उस व्यक्ति पर लागू होती है जिसने दिव्य प्रेम द्वारा भगवान कृष्ण के प्रति वास्तविक आसक्ति उत्पन्न कर ली है. दूसरी विधि उसके लिए है जिसने इस प्रकार से भगवान कृष्ण के प्रति आसक्ति नहीं उत्पन्न की है. इस द्वितीय श्रेणी के लिए नाना प्रकार के विधि विधान हैं जिनका पालन करके मनुष्य अंतर कृष्ण आसक्ति अवस्था को प्राप्त हो सकता है.
तो ये श्लोक साधना भक्ति को सूचित करता है. ये साधना भक्ति में दो प्रकार का विधि है, एक है वैधि साधना भक्ति है, दूसरा है रागानुग साधना भक्ति है. टू काइंड्स ऑफ साधना भक्ति. भक्ति सामने से शुरू हुआ आपका नहीं भगवान, उसके अंदर इसको विस्तृत रूप में कहा जाता है. साधन भक्ति के अंतर्गत दो वैसे तीन प्रकार के, साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति. साधन भक्ति के अंतर्गत दो कैटेगरी है, एक है वैधि साधन भक्ति, दूसरा है रागानुग साधन भक्ति. वैधि साधन रागानुग साधन भक्ति वो तो प्रेम भक्ति का स्तर है. ये श्लोक में साधन भक्ति को इंगित किया जा रहा है, लेकिन साधन भक्ति के अंतर्गत ही दो है जिसके बारे में प्रभुपाद इधर लिखते हैं. इन दिस वर्स टू डिफरेंट प्रोसेस ऑफ भक्ति योगा आर इंडिकेटेड. द फर्स्ट अप्लाइज टू वन हु हैज एक्चुअली डेवलप्ड एन अटैचमेंट फॉर कृष्णा. हाँ हाँ, and the other for one who has not developed attachment for supreme person krishna by transcendental love. For this second class there are different prescribed rules and regulations one can follow to be ultimately elevated to the stage of attachment to krishna.
तो ये दोनों में अंतर क्या है? वैधि साधन भक्ति में, राघवानों का साधन भक्ति में अंतर क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस?
हाँ,
तो रागानों का किस स्तर में क्या मंगलारती नहीं करेगा?
पहले कोई नियम बनेगा, उसके बाद उसको राग उत्पन्न
होगा। नियम से करेगा, उसको करना है, अपनी इच्छा से करेगा।
ठीक है, वेरी गुड। लेकिन टेक्निकली इस बात को कहा जाता है, इन दोनों के बीच में अंतर केवल प्रेरणा का स्रोत। जैसे मैं कुछ करता हूं, मैं क्यों करता हूं? मुझे प्रेरणा हुआ, आई गॉट इंस्पिरेशन। गुरु साधु शास्त्र से प्रेरणा प्राप्त करके किया गया जो कार्य है उसको वैधी साधन भक्ति कहा जाता है। स्वतः अपने अंदर से ही भगवान के प्रति जो थोड़ा सा राग उत्पन्न हुआ, वो राग से प्रेरणा प्राप्त करके किया गया जो साधना है उसको रागानुग साधना कहा जाता है। उदाहरणार्थ सुबह मंगलारती उठना, मंगलारती मैंने क्यों उठा? क्योंकि मेरे बाजू वाले भी उठाए जिससे मैं उठा, मेरे जो साथ सोया होता वो भी उठा जिससे मैं भी उठा। यानी मैं वो भी साधन भक्ति है, लेकिन कैसा है? वही नहीं। तो प्रेरणा कहां से मिला आपको करने का? मैं 16 माला जप करता हूं, क्यों? मेरे गुरु ने मुझे आज्ञा दिया है, मैंने दीक्षा लिया, इसलिए अगर नहीं लिया होता तो। तो प्रेरणा का स्रोत
अंदर से जो प्रेरणा हुई, वो जब गुरु साधु शास्त्र से जो ज्ञान मिला उसी से प्रेरणा हुई।
लेकिन ये जो स्टिल अभी भी जो वैधी साधन भक्ति के अंदर जो हुए हैं, अगर उनको भक्तों का संग गुरु का निरीक्षण के अंतर्गत नहीं होता तो नहीं करता, तो छूट जाता है, अपनी भक्ति छूट जाता है,
मतलब वैधी भक्ति
हो जाता है। लेकिन कुछ समय के बाद जब वो रागानों का स्तर में पहुंचने का, वो अकेला भी है, कोई देख भी नहीं रहा, लेकिन फिर भी टाइम टू मंगलारती करेगा, टाइम टू समय करेगा, सब कुछ अपना अपना करते हैं। अंतर है, कुछ लोगों के मन में वहम है कि रागानुगा का स्तर में जब किया नहीं किया तो भी चलेगा, मंगलारती किया नहीं किया तो भी चलेगा, हम तो रागानुगा है, ये सहज ही अंडरस्टैंडिंग। रागानुगा के स्तर में भी वो सारे नियम को पालन करते हैं, लेकिन अंतर यह है कि प्रेरणा जो है स्वयं अपनी हृदय से प्राप्त होते हैं।
मतलब ऐसा लग रहा बात कहते हैं कि वैधी भक्ति कंपल्शन है और रागा हुआ भक्ति
वो स्वतः अपने स्वेच्छा से करता है, स्वेच्छा से करता है। तो इसलिए ये श्लोक में भगवान कहते हैं कि धीरे धीरे ऐसी करते रहोगे अभ्यास योगे न तथो माम इच्छाप्तुम धनंजय। क्या होगा? माम इच्छा तुम मेरे प्रति राग को उत्पन्न करोगे।
इसमें उत्पन्न करो शब्द वही है ना आपके मतलब कि वेग करो, ऐसा करो,
हाँ ऐसा करो,
ऐसा करो,
हाँ वो स्थिति आएगा। पहला श्लोक में भाव प्रेम का वर्णन है, पहला मतलब इसके पहले वाला आठवां श्लोक में, और नौवां श्लोक में साधना का स्तर का वर्णन है। ठीक है, हाँ भाव और प्रेम, क्योंकि भगवद गीता जो है उसके अंदर इतना एकदम क्लासिफिकेशन के साथ पूरा वर्णन नहीं किया गया, भक्ति रसामृत सिंधु में जो जिस प्रकार किया गया है, भाव और प्रेम को एक कैटेगरी में डाल के ये पहला श्लोक मई एव मनादस्व मई बुद्धि निवेश संशया ये टॉप क्लास प्योर बिलीव। उसके बाद साधन भक्ति, ठीक है, लेकिन ये साधन भक्ति हमेशा गुरु के निरीक्षण में किया जाता है। प्रभुपाद जी 1, 2, 3, 4 चौथा पैराग्राफ पढ़िए।
भक्ति योग की विधि विधानों का अभ्यास करने के लिए मनुष्य को किसी सुविज्ञ गुरु के मार्गदर्शन में कतिपय नियमों का पालन करना होता है।
कतिपय मतलब to practice the regulative principles of bhakti yoga, one should, under the guidance of expert spiritual master, follow certain principles.
Yatha brahmamuhurt mein jagna, snan karna, mandir mein jana, tatha prarthna karna, evam hare krishna kirtan karna, phir archa vigrah par chadhane ke liye bhog chunna, archa vigrah par bhog chadhane ke liye bhojan banana, prasad grahan karna aadi, aise anek vidhi vidhan hain jinka palan avashyak hai। मनुष्य को शुद्ध भक्तों से नियमित रूप से भगवदगीता तथा श्रीमद भागवत सुनना चाहिए। इस अभ्यास से कोई भी ईश्वर प्रेम के स्तर तक उठ सकता है और तब भगवत धाम तक उसका पहुंचना रोग है। विधि विधानों के अंतर्गत गुरु के आदेशानुसार भक्तियों का यह अभ्यास करके मनुष्य निश्चय ही भगवत प्रेम की अवस्था को प्राप्त हो सकेगा।
तीसरा थर्ड वर्ड्स, ये जो पांच लोग सीरियस में, कोई व्यक्ति कहता है ये नहीं कर सकता, क्या मैं भक्त नहीं बन सकता हूं? अगर मैं अभ्यास नहीं करूंगा ये कर पाऊंगा तो क्या मैं भक्ति नहीं कर सकता हूं? आई कैन नॉट डू डिवोशन। अभ्यास्येप्य समर्थोसि मत्कर्मा परमो भव मदत्तमति कर्माणि पूर्वं सिद्धिम वाप्स्यसि। अभ्यास योग असमर्थ हो सी, कि अभ्यास के प्रति भी असमर्थ हो, अभ्यास करने भी असमर्थ हो, क्या करो? मत कर्म परमो भवा, मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि। मत कर्म परमो भवा, मत कर्म परमो भवा का मतलब क्या है? मत कर्म, मत कर्म मतलब मेरे लिए कर्म करो। मदत्तापि कर्माणि, मेरे प्रति कार्य करते करते तो क्या होगा? सिद्धिम वाप्स्यसि, क्या हुआ सिद्धि? पहले वाला श्लोक साधन भक्ति को प्राप्त करना। एक प्रश्न जवाब दीजिए, साधन वैदिक साधन भक्ति शुद्ध भक्ति है कि नहीं? वैदिक साधन भक्ति शुद्ध भक्ति है कि नहीं? वेरी गुड, शुद्ध भक्ति है। यानी इधर जो वर्णन किया जा रहा है सिद्धि मतलब इधर क्या है? वैदिक साधन भक्ति शुद्ध भक्ति को प्राप्त करोगे। यानी इस श्लोक में जो वर्णन हुआ है ये कौन सी भक्ति का वर्णन हो रहा है? ये श्लोक, ये वाला दसवां, कर्म योग, कर्म मिश्र भक्ति का वर्णन हो रहा है। कर्म मिश्र भक्ति का वर्णन हो रहा है, ठीक। थोड़ा सा बहुत सूक्ष्म श्लोक है, वही सरल श्लोक है। कर्म मिश्र भक्ति, ये कर्म मिश्र भक्ति में शुद्ध भक्ति में अंतर क्या है? वेरी गुड, अंतर ये अंतर क्या है? आसक्ति किसके प्रति है? शुद्ध भक्ति में आसक्ति किसके प्रति है? जिसके लिए कार्य कर रहे उसके प्रति आसक्ति। कर्म मिश्र में आसक्ति किसके प्रति है? अभी कार्य के प्रति, वो कर रहा है कृष्ण के लिए, और उनको बोलेंगे कि नहीं ये मत करो, ये करो कृष्ण के लिए, नहीं नहीं मैं यही करेगा। उनका आसक्ति ज्यादा झुकाव कर्म के प्रति है, कार्य योग अपने प्रवृत्ति है, क्योंकि जो कार्य करता है कैसे करता है? अपने प्रवृत्तियों के हिसाब से करता है व्यक्ति, गुणों के हिसाब से करता है। तब गीता में कहते हैं ना भगवान कि नहीं क्षण जात कृष्ण कर्म कार्य अवश्य कर्म सर्वकर्मा प्रकृति गुण ही,
अभी ये प्रकृति के तीनों गुणों के प्रभाव से पूर्ण तरीके से मुक्त नहीं हुआ, स्टिल कंडीशन प्रकृतिर गुण ही ये तीनों गुणों के प्रभाव के अंतर्गत कार्य कर रहा है। इससे उनका आसक्ति किसके प्रति है? कर्म के प्रति है, इट इज स्टिल अटैच टू द वर्क। लेकिन शुद्ध भक्ति के स्तर में वो किसके प्रति आसक्त है? जिसके लिए कार्य कर रहे, कौन है वो? कृष्ण के प्रति आसक्त, इज अटैच टू कृष्ण। तात्पर्य में बाद में वापस आएंगे, तुरंत अगले वाला श्लोक देखिए। मान लो कोई व्यक्ति कहता है कि नहीं 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 ये नहीं हो पाएगा मेरे से, भगवान के लिए कार्य करो ये कैसे होगा, तब अतैतद्यप्यसक्तो से कर्तृमद्योगमाश्रित सर्वकर्म फल त्यागात तद कुरु यथात्मवान। अनुवाद पढ़िए।
किंतु यदि तुम मेरे इस भावना व्रत में कर्म करने में असमर्थ हो तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों को त्याग कर कर्म करने का तथा आत्म स्थित होने का प्रयत्न करो। कर्म फल त्याग,
कर्म फल त्याग। जो भगवान के लिए कार्य करने में असमर्थ है फिर भी भगवान कहते तुम भक्त बन सकते हो, क्या करो इसके लिए? कर्मों का फल त्याग। ये कर्मों का फल, कर्म फल त्यागात, उस समय आसक्ति किसके प्रति है? कर्मों की फल के प्रति। तो एक है कर्मों के फल के प्रति आसक्ति, उसके बाद कर्मों के प्रति आसक्ति, बाद में जिनके लिए उनके प्रति आसक्ति उत्पन्न करने का प्रयास, बाद में पूर्ण तरीके से आसक्त होकर शुद्ध प्रति बनना। ये जिसको बोलते हैं योगा लैडर।
ऐसा लग रहा है उल्टा चल रहा, ऊपर से
चल नहीं, ये कर सकते थे लेकिन फिर भी मानना चाहिए चारों के चारों कौन है वो? कर्म फलों के प्रति आसक्त होने पर भी कर्म फलों को भगवान को अर्पण कर रहा है वो, उस व्यक्ति से अच्छा है जिनके पास कर्म फल के प्रति आसक्ति नहीं है लेकिन फिर भी वो भगवान के प्रति कोई कार्य नहीं कर रहा, यानी भक्त नहीं है। कुछ लोग हैं आपको दिखते हैं वैरागी जैसे, ना वो कृष्ण के भक्त हैं और उनको कर्म प्रति है, वो कर्मों के फल के प्रति आसक्ति नहीं है। कर्मेंद्रिया गेटिंग पॉइंट, कर्मेंद्रिया आस्ते मसास पर इंद्रिया विद्याचार उच्चते ना, वो तो है लेकिन इधर भगवान इन चार श्लोकों भक्ति का श्रेष्ठता को वर्णन कर रहे हैं। ही इज एक्सप्लेनिंग द ग्लोरी ऑफ डिवोशनल सर्विस। सबसे पहला टॉप मोस्ट स्टेप है आठवां श्लोक, उधर भगवान के प्रति पूर्ण तरीके से आसक्ति है, प्रेम उत्पन्न हुआ है, मई आवेश बनो मई मई बनादस्वा मई बुद्धि निवेश निवेश मई अथोर्धम न संशय। ये भाव और प्रेम भक्ति का स्तर है, ठीक है ये क्लियर है। मेरा चित्त वैसा नहीं है, कोई प्रश्न पूछा मैं क्या करूं, तुम उनको क्या बोलाओगे बताओगे? साधना। ये साधना के अंतर्गत भी दो है, एक है वैदिक साधन भक्ति, दूसरा साधारण साधन भक्ति, जिसके द्वारा माम इच्छा आप तुम जाए भगवान के प्रति इच्छा प्रकट होती है और धीरे धीरे से प्रेम भाव प्रेम को प्राप्त कर सकता है। तो साधना में भी करने के लिए थोड़ा सा वो नहीं कर पाता है, तब उनको क्या बोलोगे? कर्म विश्व भक्ति, ठीक है भगवान के लिए कार्य करो। ठीक है आप इंजीनियर हो ना, ठीक है भगवान हमारा बड़ा मंदिर है तो बहुत सारे इंजीनियर का काम करो, तो ये भी नहीं कर सकता है। तो इतना बड़ा मंदिर है हमारा, बहुत खर्चा है, आप कमाते हो ना कम से कम 10% दे दो। कर्म फल अर्पण, कर्म फल त्यागा तथा पूर्व यथा
ये चारों को ही भक्त बोला जाता है, ऑल कॉल्ड डिवोटीज। इसको कर्म फलार्पण बोला जाता है, कर्म फलार्पण। कर्म फलार्पण में कर्म मिश्र भक्ति में अंतर है। एक उदाहरण किसी के द्वारा बताता हूं। भगवान के लिए एक एक भक्त कंप्यूटर चला रहा है, वो ये चारों लेवल में हो सकता है। वो शुद्ध भक्त जो भाव प्रेम को प्राप्त किया भक्त भी हो सकता है, जिसको कंप्यूटर चलाने की जो कार्य है आठवां श्लोक के अंतर्गत अगर करता है उसको क्या बोला जाता है, कैंकर्यम बोला जाता है। इसको कैंकर्य ऐसे भगवान का सेवा किया भगवान हनुमान ने, किंकर दास्यम है लेकिन कहीं करिए हुए। साधना के स्तर में श्रवणम कीर्तन विश्वन बल सेवन अर्चन वंदनम दास्यम, दास्यम हुआ। और कर्म फलार्पण में वो क्या कर रहा है, मुझे कंप्यूटर चलाना आ गया, कंप्यूटर चलाना भगवान के लिए कर रहा हूं मैं, उसको दास्यम नहीं बोला जा सकता। कर्म फलार्पण में क्या कर रहा है, ठीक है मैं बाहर के लोगों से मैं कंप्यूटर चलाता हूं तो मैं 5000 देता हूं मंदिर में, ठीक है 3000 देता हूं। ये चारों कृष्ण के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, ऑल डिवोटीज। इस बात को ध्यान रखना चाहिए, कर्म फलार्पण कृष्ण के लिए कार्य करना, साधना और अंततः शुद्ध भक्ति, प्योर डिवोशन सर्विस इन लव ऑफ गॉड। इन बातों को भगवान कहते हुए कहते हैं कि ये चारों में से सर्वश्रेष्ठ कौन है, लेकिन फिर भी ये चारों भक्त होने के नाते अन्य प्रकार को विधि विधान को स्वीकार करने वालों में से ये भक्त जो है ये श्रेष्ठ है। तो इसलिए इस बात को फुल स्टॉप करने के लिए, स्टॉप करने के लिए 12वां श्लोक को उच्चारण करते हैं। अभ्यासात् ज्ञानात् ज्ञानम् विशिष्यते, ज्ञानात् कर्म फल त्यागात् त्यागात् शांतिरनन्तरम्। ये मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड श्लोक है, कॉन्ट्रोवर्शियल एंड कॉम्प्लिकेटेड श्लोक है। 12th वर्स, ये बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला है, विचलित करने वाला है।
यदि तुम ये अभ्यास नहीं कर सकते तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ, लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है और ध्यान से भी श्रेष्ठ है कर्म फल का परित्याग, क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को मन शांति प्राप्त हो सकती
है। ठीक है, तो ये श्लोक को थोड़ा सा रखिए क्योंकि इसको थोड़ा सा नए तरीके से सर स्टार्ट विद द नेक्स्ट इसका आप सर लेके आओगे तब शुरू करेंगे इसका, या इवन हो सकता है कल भी शुरू करेंगे। लेकिन एक छोटा सा होमवर्क टाइप समझ लीजिए, आप विचार कीजिए, ये जो चार श्लोकों को भगवान ने कहा है, इस 4 verses ही टोल्ड 8, 9, 10, 11, इसको ये चार प्रकार के लोगों के साथ हमारा कैसा व्यवहार होना चाहिए और मैं कौन से स्तर में हूं, ये सब चीजें आप विचार करते हुए आप जस्ट एक 100 शब्दों में कुछ लिखिए, जस्ट राइट। इसका परफेक्ट और क्लियर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। अगर एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है तो हमारे प्रचार में, हमारे डीलिंग्स में भी बाधा होता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति पहली बार मंदिर में आए और उनको डायरेक्टली बोला जाए कल मंगल आरती आओ, कल जन्माष्टमी है, सोना माला करो और समथिंग लाइक दैट, तो थोड़ा तकलीफ होता है। तो उनको जज करना चाहिए व्यक्ति कहां ये कर्मार्पण करने में है, क्योंकि तो आए मंदिर में कुछ ना कुछ है, सुकृति है तभी आए। तो ठीक है, उनके कर्मार्पण का स्तर में प्रचार करना चाहिए। अगर वो उससे थोड़ा परे है तो कुछ समय दे सकता है भगवान के लिए, सेवा कर सकता है, तो सेवा में नहीं कर सकते हो, कृष्ण के लिए करो, ठीक है। तो कौन भक्त कौन से स्तर में है, उस हिसाब से उनको कृष्ण के साथ जोड़ना, ये तभी संभव है जब इन जानते हैं कि चारों प्रकार के लोग भक्त हैं। जो मंदिर से जुड़े लाइफ मेंबर है वो कौन से स्तर में है, कर्मार्पण, उनको उसी प्रकार डीलिंग किया जाता है। उनको बोलेंगे कि आप साधन भक्ति में आ जाओ, कल से कि इतना साल हो गया मंदिर में आप दान देते आ रहे आए हो, सब कुछ इससे थोड़ी ना होता है, कुछ कांग्रेगेशन प्रीचर को थोड़ा सा जोर देके उनको एक ही दिन में कुछ करना चाहते नहीं। इफ इज इन दैट प्लेटफॉर्म, उनको उधर रहने दीजिए और धीरे धीरे से अपने आप स्वयं इच्छा व्यक्त करेगा, बट ही शुड ऑल्सो बी रिस्पेक्टेड, क्योंकि उन्होंने कृष्ण के लिए कर्मों का फल को उन्होंने क्या किया, क्या किया, इज गिविंग समथिंग टू कृष्ण। और धीरे धीरे से जब वो आके मंदिर में देखते हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं मेरे जैसे ही है, प्रेस्ट है, सब है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं मंदिर में, टाइम देके मंदिर में सेवा कर रहे हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं और मंदिर में कोई मंदिर धोते भी हैं, ये कौन है लोग, ये कृष्ण के लिए सेवा कर रहे हैं, अपने प्रवृत्ति कर, ये कौन है, ये कौन सी कैटेगरी है, कॉन्ग्रीगेशन। आइडियली ऐसा होना चाहिए। और कुछ लोग ये मंदिर में मिलते हैं, कौन है वो, चाहे कुछ भी हो 4:30 बजे ठीक मंदिर में आ जाते हैं और बैठ के सोलहवाला अपने जप करते हैं और दिन भर वो केवल कृष्ण के सीधे संबंधित कार्यों में लगे रहते हैं, ये कौन है, फुल टाइम ब्रह्मचारी है, साधना में ही लगे हुए हैं और जो महान उच्च स्तर में सन्यासी है, गुरुजन है, वो कौन है, शुद्ध भक्ति के स्तर के भी एकदम टॉप मोस्ट स्तर में, प्रेम भक्ति में लगे हुए प्रभुपाद जी है। तो आप किसी को भी फोर्स नहीं कर सकते भक्ति में, यू कैन नॉट फोर्स एनीबडी, कंपल्शन नहीं, क्योंकि भक्ति जो है वो स्वेच्छा से किया जाता है। ये मान लीजिए कोई साधक ब्रह्मचारी है, वो शासन के अंतर्गत अपने आप शरणागत होकर आया, उनको ही फोर्स किया जाता है आपको 4:30 बजे आना, ये अपने आप को समर्पित करके नहीं, आप मुझे फोर्स करो करके अपना स्वेच्छा को अर्पण किया, ये हैज गिवन अप हिज फ्रीडम इंडिपेंडेंस।
उसका क्या पहचान, जैसे आप दरी भक्ति वाला को ऐसा बता दें, राघा मंगला वाले को कहां पे
पहचान, यही है,
पे कहां है?
एक अंग्रेज में कहा होता है, इफ यू वॉन्ट टू नो हु यू आर यू बी अलोन फॉर सम टाइम। आप जानना चाहते हो कि मैं कौन हूं, अकेले में आप जो हो वो आप हो, तो मान लीजिए आप एक हफ्ते के लिए कहीं बाहर जाना हुआ, यहां कोई भक्ति नहीं, आप कोई पहचान नहीं, उधर भी आप बैठ के सोलह माला करते हो, उधर भी रोज भगवत भागवत पढ़ते हो, उधर भी रोज मंगल आरती करते हो, कोई देखे ना देखे बिना परवाह के, एक हफ्ता है 10 दिन, इसका मतलब है अभी भी आप रात के स्तर में, भक्तों के संग में ये सब करना बहुत आसान है, वेरी इजी। कि कोई ना कोई है धक्का देने वाला, ये ना अकेले
तो प्रति व्यक्ति वाला ये दिखाना चाहता है कि मैं मतलब वो ऐसा कुछ लोगों को दिखा बताता है कि मैं मंगला में आ रहा हूं, मैं सोलह मंगला कर रहा हूं,
दिखाना नहीं है, वो प्रेरणा दूसरे से प्राप्त करता है। इसको ऐसा नेगेटिव वे में कभी लेना नहीं चाहिए, यू शुड नॉट टेक इट नेगेटिव वे। हमेशा देखो सुबह आश्रम में कभी देर होता है उठने में या लेट सोते हैं तो सुबह उठ के देखते हैं बाजू वाला उठा नहीं ना, थोड़ा सा और पूरे वो उठा था तो क्योंकि प्रेरणा कहां से मिल रहा है आपको, ये दिखाने की भावना उस हिसाब से लेना ही चाहिए। इज गोइंग फॉर कृष्णा ना, दिखाए तो किसको, कृष्ण को ही दिखा रहा है ना, इस एक बार कृष्ण कोई प्रॉब्लम नहीं। सो बट द पॉइंट इज का प्रेरणा कौन है, दूसरे वाला पांच वाला फियर। हाँ हाँ, प्रेरणा जो है गुरु साधु शास्त्र ये तीनों से लिया जाता है। और ये मैंने दीक्षा के समय मैंने वादा किया था मैं 16 माला रोज करूंगा, वो भी प्रेरणा जो है वो बाहर से है, लॉज एक्शन दैट इज कॉल्ड वैदिक साधन।
कृष्णा
एक्सेप्ट दिस, कृष्णा लाइक्स बोथ। ये बात को ध्यान में रखना चाहिए, कृष्ण की दृष्टिकोण से सभी समान। इतना हद तक कि पंचरात्रि ग्रंथ में कहा गया है कि अनजाने में भी एक व्यक्ति आता है मंदिर में और देखता है कि वो प्रणाम कर रहे तो मैं भी करूंगा, उसको मालूम नहीं कृष्ण कौन है, कृष्ण जो है उनको भी। तो सभी भक्त हैं, ऑल आर डिवोटीज। कभी कभी ऐसा मंदिरों में ऐसा देखा जाता है कि कुछ ऐसे ब्रह्मचारी बोले हैं नहीं नहीं पहले भक्तों को खिलाओ बाद में बाहर के लोगों को खिलाना। तो ये इस तरह राइट एटीट्यूड, उनको बार बार यह पढ़ाना चाहिए, ऑल आर डिवोटेड। कृष्ण के लिए सभी बंद, लेकिन हमारे लिए है कि जैसे मान लो कोई आईआईटी में है, आईआईटी में फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, फोर्थ ईयर में है, चाहे कोई भी ईयर में हो आईआईटी में है ना, वो कोई भी साल में हो किसमें है, वो इज इन आईआईटी दैट इज स्पेशल। ठीक है फोर्थ ईयर में हम प्रणाम करेंगे अलग बात है, लेकिन अल्टीमेटली ही इज इन आईआईटी दैट हैज टू बी अंडरस्टूड। कृष्ण की परिवार में जुड़ा ये कॉन्शियसनेस इस प्रकार का हमारा बना के रखना चाहिए। थोड़ा ये 12वां जो है श्लोक है वो विल डिस्कस लेटर, बाद में गुण आएंगे भक्तों के गुण, द क्वालिटीज ऑफ डिवोटीज। आप सबको एक एक कुछ गुणों को बांटा जाएगा जिसके ऊपर आप अपना एक्शन। हरे कृष्ण। हाँ
मन्मनाभ मत्तत्व मध्यादि नाम नमस्कार।